पंचदशी के ध्यान दीप प्रकरण का 14 श्लोक। वेदान्तेभ्यो ब्रह्मतत्व मखंडैक रसात्मक परोक्षम अवगम्यैत अहमस्मीत्युपाशते। वेदान्तेभ्यो ब्रह्मतत्त्वम् अखण्डैकरसात्मकम् परोक्षम् अवगम्यैत अहमस्मीत्युपाशते। अब संवादी ब्रह्म की व्याख्या करते हुए बता रहे हैं। संवादी ब्रह्म की तो व्याख्या समझ लिया आपने, प्रत्यक्ष अनुमान आगम तीन प्रमाण दिया और चार दिया, पुराण का भी दिया था चार प्रमाण। कि संवादी ब्रह्म बोलते हैं जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, है तो ब्रह्म पर लक्ष्य की प्राप्ति। जिस प्रकार मंदिर के झरोखे में रखी हुई है मणि, उसकी रोशनी बाहर आ रही, तो रोशनी अलग है मणि अलग है, फिर भी हमने रोशनी में मणि बुद्धि कर ली, तो रोशनी में मणि बुद्धि होने से अपने आप में स्वरूपतः भ्रांति है, पर स्वरूपतः भ्रांति होने पर भी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती, मणि मिल जाती है। ऐसे ही स्वरूपतः मिट्टी लकड़ी पत्थर अपने आप में जड़ है, तो चैतन्य के अभाव वाले मिट्टी में लकड़ी में पत्थर में हमने यदि चैतन्य की भावना किया, ब्रह्म की भावना किया, जगन्नाथ भगवान की भावना किया, भूत भावन भगवान शंकर की भावना किया, नारायण की भावना किया, तो स्वरूपतः ब्रह्म होने पर भी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती, इसका नाम है संवादी भ्रम। अब आगे देखिए शंका क्या उठा रहे। ननु ब्रह्म तत्त्वम् ब्रह्मत्वम् ज्ञात्वा उपासनम् क्रियते अज्ञात्वा वा। पूर्व पक्षी बोलता है कि बताओ, ब्रह्मत्व को जानकर उपासना करते हैं या नहीं जानकर? कितना बढ़िया सवाल किया। ब्रह्मत्व मतलब कि शुद्ध बुद्ध मुक्त अनंतत्व, इसका नाम ब्रह्म है। तो ब्रह्मत्व को जानकर उपासना करते हैं या नहीं जानकर उपासना करते हैं? ये बहुत खतरनाक प्रश्न है। जब जाने लिया तो उपासना करना बेकार है, सीधी बात है। यदि आप बोलो जानकर करते हैं, तो जब जाने लिया तो उपासना करना कोई मतलब नहीं, और कहो कि हम बिल्कुल नहीं जानते, तब नहीं जानते तो उपासना कैसे करोगे? उभयता पासा रज्जू बोलते इसको, दोनों तरफ गर्दन फंस जाएगी। हाँ, यदि आपने जान लिया ब्रह्म को तो उपासना करना बेकार है, जान लिया तो उपासना क्यों करना? और कहे न कहो नहीं जानता हूं, जब ब्रह्म को नहीं जानते हैं तो भी उपासना करना व्यर्थ है, क्योंकि जिस चीज को हम नहीं जानते उसका चिंतन नहीं हो सकता। उपासना बोलते मानसिक चिंतना को, उपनिषद में कहा उपासना नाम है, मन की अंतरंग वृत्ति विशेष को उपासना बोलते हैं। तो जब आप जानते नहीं हैं तो मन से कैसे चिंतन करेंगे, तो भी बेकार है, ऐसा प्रश्न कर रहा। ननु ब्रह्मत्वम ज्ञात्वा उपासनम क्रियते अज्ञात्वा वा। ब्रह्मत्व को मतलब भगवत्ता कुछ जानकर उपासना करते हैं या नहीं जानकर करते हैं? आद्य पहला विकल्प उपासना वैयर्थ्यम, उपासना बेकार, क्योंकि आपने जब ब्रह्मत्व को जान लिया तो उपासना करने कोई मतलब ही नहीं है। भाई किसी ने भोजन कर लिया, आद्य मतलब पहला विकल्प, दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन था ज्ञात्वा, हाँ जानकर। दूसरा था अज्ञात्वा, दो ऑप्शन था। तो आप ब्रह्म को जान लिए तो उपासना करना व्यर्थ है। जैसे कोई भोजन कर लिया और आप बोलो मां भुंजीता भोजन मत करो, तो बोलना तो बेकार है ना, भोजन तो कर ही लिया, पहले बोलना था। ऐसे जब आपने ब्रह्मत्व को जान लिया तो उपासना करना व्यर्थ। आद्य मतलब पहला विकल्प, उपासना वैयर्थ्यम, उपासना व्यर्थ है। मोक्ष साधनस्य ज्ञानस्यैव विद्यमानत्वात्, क्योंकि मोक्ष साधन जो ज्ञान है वह तो हो ही गया, तो फिर उपासना करना व्यर्थ। व्यर्थ नहीं कह सकते इसको, आप ऐसा उत्तर दे सकते जैसा गीता में भगवान ने कहा ना जनक के लिए, कि वो जनक की विषय माता है ना, लोक संग्रहार्थम, गीता में आता है कि लोक संग्रह के लिए जनकादि भी राज्यादि कार्य में प्रवृत्त देखे जाते हैं। तो लोक संग्रह आप कह सकते हैं, हाँ शंका है, आगे उत्तर देंगे लोक संग्रह। द्वितीय दूसरा विकल्प, दूसरा क्या था आपका मालूम है, अज्ञात्वा, हाँ ब्रह्मत्व को बिना जाने उपासना कर रहे हैं, ऐसा बोलो तो अभी ठीक नहीं। क्यों नहीं ठीक, कि विषय अपरिज्ञानात् उपासनमेव न घटते इत्याशंक्या, विषय का जब ज्ञान है ही नहीं तो उपासना नहीं घट सकती। भाई जिस चीज को आप जानते नहीं तो उसका बैठकर चिंतन कैसे करेंगे, हो नहीं सकता, तो भी व्यर्थ है। इसको बोलते हैं खंडन खंड खाद्य की नीति दोनों तरफ से। हाँ जैसे वो आता ना, गार्गी ने पूछा याज्ञवल्क्य से, बताओ वो ब्रह्म का स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है, पहचान क्या है, ऐसा प्रश्न किया। यदि आपने बता दिया तो भी हार जाएंगे। नहीं वो तो पुराना प्रश्न है, ये पूछा था गार्गी ने घुमा फिराकर कि आप बताओ सबका आश्रय आपने का आकाश, पर आकाश जिस आश्रय में है अधिष्ठान तत्व का उस ब्रह्म का स्वरूप क्या, लक्षण क्या, पहचान क्या। तो यदि बोल देते वाणी से तो वाणी का विषय हो गया तो भी हार जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म तो वाणी का विषय नहीं। तो आपने कैसे उसको वाणी से कर दिया, कैसे अनुभव कर लिया, जो अनुभव होगा वो साकार होगा, अब ब्रह्म तो निराकार है। जो भी हमारे चिंतन का विषय होगा, अनुभव का विषय होगा, साकार होगा, ब्रह्म तो निर्गुण निराकार। तो आप यदि बता देंगे तो भी आप जो है ना पराजित, और नहीं बोलेंगे तो ले जी इनको आता ही नहीं, सीधी बात है, नहीं बोले तो इनको मालूम भी नहीं, पता ही नहीं। पर बड़े बुद्धिमान याज्ञवल्क्य जी घुमाकर बोले, बोले एते ब्राह्मणा अभिवदंती, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े महापुरुष महामानव विद्वान ब्राह्मण कहते, क्या कहते, अस्थूलम अनणु अरस्वम अदीर्घम अलोहितम अच्छायम श्रम आतम ब्रह्म, वही ब्रह्म है, ऐसा बोला, उत्तर भी हो गया और जो है बोलने का दोष भी नहीं लगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र बोल रहा है, श्रुति भगवती बोल रही, स्मृति बोल रहे हैं, ऐसा बोल दिया। तब गार्गी मान गए, बोले इनको कोई जीत नहीं सकता शास्त्र अर्थ में, समझे कि नहीं, ऐसी यहां बोल रहे। यदि आप कहे कि मैं जानता हूं तो उपासना करना व्यर्थ, आप कहो कि ब्रह्म को नहीं जानता हूं तो उपासना कैसे करोगे जब जानते ही नहीं हो। तब यहां पर 14वें श्लोक से उत्तर देंगे, वेदांतेभ्यो ब्रह्म तत्त्वम् अखंडैक रसात्मकः परोक्षम अवगम्य। उत्तर दिया कि देखो भाई, हम ब्रह्म तत्व को वेदांत से जानते हैं, स्वतः नहीं जानते हैं, स्वतः मतलब स्वानुभव से नहीं जानते, वेदांत से, शास्त्र से, श्रुति स्मृति के द्वारा। अखंडिक रसात्मक है, परोक्ष रूप से अवगम्य हमने जान लिया। और एतत् अहम अस्मीति उपासते, इसके बाद उपासना करते हैं। और वास्तव में वेदांति सच्चा उपासक हो सकता, सच्चा भगत हो सकता, और भगत होंगे पर व्यवहारिक होंगे, प्रातिभाषिक होंगे, सामयिक होंगे, शास्त्रीय होंगे, पर पारमार्थिक नहीं। विवेक चूड़ामणि में नहीं, अलग है ना। परमार्थिक बोलते हैं स्वस्वरूपानुसंधान, लक्षणा भक्ति है आपकी अनन्या भक्ति, उसको परमार्थिक बोलते हैं। स्वस्वरूपानुसंधानात्मिका, हाँ, भक्ति इत्य विधीयते, आचार्य की पंक्ति है कि स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति रित्य विधीयते, इसको भक्ति बोलते हैं, जिसको अनन्या भक्ति बोलते हैं। तो द्वैत में कहां होगा? आप तो कहेंगे मैं अलग, वह अलग, ये अलग, तो द्वैत में नहीं बनेगा वो ना। स्वस्वरूप के अनुसंधान का नाम है पारमार्थिक उत्तम भक्ति। तो यहां बता रहे कि भाई पहले वेदांत का श्रवण कर लिया अच्छी तरह से, सुनने के बाद अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार से मानसिक वृत्ति बनाने का नाम है अहंग्रहोपासना। तो उत्तर मिल गया ना, मतलब कि हमने जाना तो सही पर अनुभव पूर्वक नहीं। शास्त्रों से जाना, उपनिषद से जाना, गुरुवाक्य से जाना, तो जो है गुरुवाक्य से सात से जानने के बाद फिर अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन उपासना हो गया, तो दोष दूर हो गया। पूर्व पक्षी ने कहा था कि आपने जान लिया तो भक्ति करना बेकार। कहते भाई जानते तो हैं परंतु स्वानुभव से नहीं, वेदांत शास्त्र के द्वारा। क्योंकि नियम है, उपासना तभी बनती है जब यत किंचित ज्ञान हो। जब कोई बताता है कि भगवान विष्णु का ऐसा स्वरूप है, चतुर्भुजधारी है, शंख चक्र गदा पद्म किरीट वाले, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, तब जाकर मन से चिंतन करते हैं। ऐसे ही वेदांत शास्त्र से आपने पहले अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया परंतु अनुभव में नहीं आ रहा है, तो साक्षात अपरोक्षानुभूति के लिए अहम ब्रह्मास्मि की उपासना यह बन जाएगी। अयम अभिप्राय, इसका अभिप्राय क्या है? ब्रह्मात्मैकत्व अपरोक्ष ज्ञानस्य मोक्ष साधनस्य अनुत्पन्नत्वात् न उपासना वैयर्थ्यम शास्त्रात् परोक्षतया अवगतत्वात् ब्रह्मण उपासना विषयत्वमिति। ब्रह्मात्मैकत्व जो अपरोक्ष ज्ञान है, जो मोक्ष का साधन है, अनुत्पन्नत्वाद, अभी आपके चित्त में उत्पन्न नहीं हुआ है, खाली ऊपर ऊपर सुन लिया हमने, सुन तो लिया परंतु चित्त में अभी उत्पन्न नहीं हुआ। मतलब कि शाब्दिक ज्ञान, इसको क्या बोलेंगे? शाब्दिक ज्ञान। आप शब्दों से खूब सुन लिया कि बासमती चावल का इतने रुपया केजी है, बहुत बढ़िया है, खुशबू आता है, उसके साथ परवल की सब्जी बना के खानी चाहिए, खूब सुन लिया, खूब पढ़ लिया, जान लिया, ये मसाला डालो, मसाला डालो, बहुत स्वाद आता है, पर आप कभी बनाए नहीं, खाए नहीं, तो अनुभव होगा नहीं होगा? वही बात बोल रहे कि आपने वेदांत से ब्रह्म तत्व को जान तो लिया, वो जानना हो गया शाब्दिक ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। पर जैसे कि अग्नि पूरे ईंधन को क्षण भर में जला के राख कर देती, ऐसे ही बुद्धि पूर्वक कृतम पापम सर्वम दहति, कृतनम दहति व निवत, क्या है? परोक्ष ज्ञानम शाब्द देशिक पूर्वकम। देशिक बोलते गुरु, गुरु मुख से यदि आपने, देशिक मतलब गुरु मुख से यदि आपने परोक्ष ज्ञान हासिल कर लिया, शाब्द देशिक पूर्वकम शब्द है, मतलब बुद्धि पूर्वक कृतम पापम कृत्स्नम दहति वह निवत। कृत्स्न बोलते संपूर्ण पाप को वेदांत ज्ञान दग्ध कर देता है। कैसे होना चाहिए? तो शाब्दम देशिक पूर्वकम, शाब्द ज्ञान हो देशिक मतलब गुरु मुख के द्वारा हो तो यह भी बन जाता है। तो इसी महिमा है। तो शाब्दिक ज्ञान का भी फल है कि आपके सारे पाप ताप से छुटकारा। जैसे मान लो आपने सुन लिया कि वेदांत कहता संसार सपना है, संसार मिथ्या है, एक आत्मा ही सत्य है। तो ऐसा ज्ञान होने पर आपके अंदर जो अहंकार है अहंकार मिट जाता। भाई सब झूठा मिथ्या कल्पना, तो क्यों रोना धोना, सपना तो सपना। चाहे अच्छी सपना हो चाहे बुरी सपना, सपना तो सपना है। चाहे सपने में आप राजा बन जाओ चाहे भिखारी बन जाओ, चाहे सपने में आपने खूब भगवान का पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया, या सपने में आपने पिस्तौल उठाकर 10 आदमी को मार दिया और जगने के बाद बोलो कि भाई हमको अरेस्ट कर लो, हमने 10 आदमी को पिस्तौल से मार दिया, तो क्या बोलेगा वो पुलिस वाला? तो दिमाग खराब है, यहां से भाग, नहीं बोलेगा। तो सपने की बात तो सपने की है। ऐसे यहां पर यदि आपने यह निश्चय कर लिया कि न मैं शरीर हो, न अहंकार हो, न मन हो, न बुद्धि हूं, ये सब संसार स्वापनिक है, इस परोक्ष ज्ञान से भी आपको दुखों से छुटकारा मिल जाता, पाप ताप से छुटकारा मिल जाता। पर होना चाहिए देशिक पूर्वक होना चाहिए। तो बोल रहे कि शाब्दिक ज्ञान होने पर यदि आपको उस आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा, उस अनुभव के लिए उपासना करना चाहिए। कौन उपासना? अंग्रह उपासना। शास्त्रात परोक्षतया अवगतत्वात, शास्त्र के मुख से आपने परोक्ष रूप से जान लिया है ब्रह्मण उपासना विषयत्वम, उस ब्रह्म का उपासना चिंतन यह बन जाएगा। तो शास्त्रों से सुनने के बाद अनुभव में उतारने के लिए, अनुभव मतलब कि जो दो प्रतिबंधक बच गए ना आपके, कौन कौन से? विषयाशक्ति दुराग्रह। विषयाशक्ति मतलब कि आप चाहते हैं कि स्वरूप का चिंतन करूं, पर चित्त हमारा विषय से चिपका हुआ है, कभी रूप का, रस का, गंध का, शत्रु का, मित्र का। भाई शत्रु के अंदर वही आत्मा जो आत्मा मित्र के अंदर, परंतु बार बार मनोवृत्ति शत्रु का चिंतन करके उद्विग्न हो रहे, मित्र का चिंतन करके खुश हो रहे। जब यह वृत्ति बन रही तो मतलब कि अभी अंतःकरण में उस तत्व का अनुभव नहीं हुआ। तो अनुभव पथ में उतारने के लिए हम ब्रह्मास्मि का उपासना यहां विधान किया। उपास्य ब्रह्म तत्व गोचरस्य परोक्ष ज्ञानस्य किम रूपम इत्याकांक्षायामः। जो उपास्य ब्रह्म है, तत्व है, उसका जो विषय जो परोक्ष ज्ञान, किम रूपम क्या उसका स्वरूप है, ऐसी आकांक्षा होने पर 15वें श्लोक से बता रहे हैं उसका स्वरूप क्या है। मतलब उपासना का स्वरूप बता रहे, कैसी उपासना, कैसे चिंतन करें। प्रत्यग व्यक्ति मनोलिख्य शास्त्रा विष्णुवादि मूर्तिवत् अस्ति ब्रह्मेति सामान्य ज्ञानम् अत्र परोक्षधी। प्रत्यग व्यक्ति मनु लिख्य शास्त्रार विश्वादि मूर्तिवत् अस्ति ब्रह्मेति सामान्य ज्ञानमत्र परोक्षधि। प्रत्येक व्यक्ति अनुलिख्य, प्रत्येक व्यक्ति बोलते हैं आपकी अंतरात्मा को। जब प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग हो ना तो समझना कि अंतरात्मा के लिए बोल रहे। तो जो आपके बुद्धि का मन का साक्षी है उसको प्रत्यगात्मा बोलते हैं। प्रत्यक्ष शब्द जो क्या है, कुटस्थ की परिभाषा अलग है। दो शब्द न शब्दों के परिभाषा होते हैं। कुटस्थ का मतलब होता है कूटमीव मायात्मक प्रपंचे स्थित इति कूटस्थ। कूटमीव, कूटमीव मायात्मक प्रपंचे स्थित इति कूटस्थ। कूट बोलते हैं जो लोहार के घर में वो निहार होता है उसकी समान बिल्कुल अविचल भाव से स्थित है। चाहे कामना हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, कोई भी समस्या आए अडिग है कूट के समान। या जो मायात्मक प्रपंच है, कूट मीव मायात्मक प्रपंच स्थित कूटस्थ है, ये परिभाषा है। कूटमीव मायात्मक प्रपंचे स्थित इति कूटस्थ। और प्रत्यग बोलते हैं, प्रति शब्द है, अंचु गतौ धातु है, गति का अर्थगमन होता है। तो प्रत्यकार्थे प्रातिकूल्येन परिच्छिन्न रूपेण गतः मतलब गच्छति इति प्रत्यग। प्रतिकार्थ प्रातिकूल्येन अंचति गच्छति जीवात्म भावेन इति प्रत्यग। प्रति शब्द अंचु गतौ धातु है, तो प्रतिकार करना प्रातिकूल्येन अंचति गच्छति जीवात्म भावेन इति प्रत्यगात्मा है। वह व्यापक जैसे घटाकाश है, में जो आकाश है वह व्यापक है, परंतु घट उपाधि के आने से परिच्छिन्न भाव को प्राप्त हो गया, प्रतिकूल मतलब विपरीत ससीम हो गया। जो आकाश असीम था वही आकाश घट उपाधि से ससीम मतलब प्रतिकूल हो गया, तो उसको बोलेंगे घटाकाश बोलेंगे। ऐसे ही जो आत्मा व्यापक थी, ब्रह्म रूप थी, वही मन बुद्धि के उपाधि से परिच्छिन्न भाव को, ससीम भाव को प्राप्त हो गई, तो उसके लिए प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग करते प्रत्यगात्मा, उसका नाम प्रत्यगात्मा है। हाँ, यहां लिखा भी है, देखो ना टीका में, देखो प्रत्यग बुद्धिम कार किया बुद्धि आदि साक्षिणम आनंदात्मानम, ऐसा लिखा। हाँ, जीव कह सकते, जीव कह सकते, पर आत्मा लगने के बाद साक्षी लेंगे, आत्मा जुड़ गया ना प्रत्यक्ष आत्मा, तो प्रत्यगात्मा का अर्थ हुआ अंतरात्मा। हाँ, बाह्यात्मा को तो ब्रह्म बोलते जो बाहर है, वो अंतर की आत्मा को प्रत्यग बोलते। दो शब्द है, जो बाहर व्यापक उसके लिए ब्रह्म बोलते, और जो हमारे शरीर की अपेक्षा अंदर है उसको बोलते हैं प्रत्यक। इतना ख्याल रखना, जो शरीर के बाहर है, जो व्यापक है, उसके लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं, और शरीर से जो अंदर है ना उसको प्रत्यक बोलते हैं, अंतरात्मा बोलते हैं हिंदी में। इतना अंतर है। हाँ सरस्वती माता, कुछ साक्षी बोलते हैं दृष्टित्व सति औदासीन्यम, साक्षी की परिभाषा दृष्टित्व सति औदासीन्यम, उदासीन है मतलब कि जो दृष्टा मतलब प्रकाशक हो, और उदासीन शब्द का अर्थ होता है प्रवृत्ति निवृत्ति शून्य होना चाहिए। न वह किसी का प्रवर्तक है न निवर्तक है। जैसे भगवान सूर्य जगत के साक्षी हैं, प्रकाश रोशनी सूर्य भगवान दे रहे हैं, पर यह नहीं कह रहे कि बेटा उठो जल्दी संध्योपासन करो, है ना, व्यापार करो, दुकान खोलो, कुछ नहीं बोलते। और यह भी नहीं कहते कितना तुम गंदा काम क्यों कर रहे हो, ये बुरा काम नहीं करना चाहिए, मना भी नहीं करते। तो सूर्य भगवान जैसे जगत के साक्षी है, तो अच्छे काम के प्रवर्तक भी नहीं, बुरे काम के निवर्तक भी नहीं, उसको साक्षी बोलते हैं। तो वह जो आत्मा है साक्षी मतलब की प्रकाशक है, अच्छे बुरे कर्म में न प्रवर्तक न निवर्तक। हाँ, जीवात्मा तो है, जीवात्मा प्रवर्तक भी है निवर्तक भी है। जीवात्मा संस्कारानुसार अच्छे काम में लग जाएगा, बुरे काम से हट जाएगा। तो साक्षी बोलते हैं जो दृष्टा होता हुआ उदासीन, उसका नाम साक्षी। हाँ, अलग अलग हो गया। जैसे एक ही जल है, पर जल में डाल दो जरा शक्कर तो मीठा हो गया, नमक तो खारा हो गया, नींबू डाल दो तो थोड़ा सा खट्टा हो गया। तो देखो जल का स्वभाव कैसा है, शीतम मधुरम च जलम। जो जल है ना शीतवत्य आपह, उसका गुण क्या, मधुर एव। जल का गुण है मधुर, मधुर मधुर मतलब मिठास। पर जल में जो खारापना है ना वो औपाधिक है, खट्टापना नींबू की उपाधि से, मीठापना शक्कर की उपाधि से। ऐसी है तो प्योर चैतन्य है, बिल्कुल शुद्ध है, परंतु उपाधि से ये सब नाम पड़ गए, कुटस्थ, अंतरात्मा, प्रत्यक, जीव, चिदाभास, ये सब नाम हो गए। इतना नहीं, दृष्टा दृष्टि की उपाधि से, बुद्धि की उपाधि से बोद्धा हो गया, पैर की उपाधि से गंता, हाथ की उपाधि से आदाता, मन की उपाधि से मनता, ये सब नाम पड़ेगा उपाधि से। है तो एक ही है? हाँ, हजार नाम है। तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति अनुलिख्य, प्रत्येगात्मा व्यक्ति का वस्तु का अनुलिख्य मतलब कि अनुभव नहीं होना। शास्त्राद विष्णुवादि मूर्तिवद, जिस प्रकार शास्त्रों से सुनकर आप एक लकड़ी में, मिट्टी में, पत्थर में नारायण की बुद्धि करते, कि परोक्ष ज्ञान हुआ, आपने अनुभव नहीं किया, परंतु शास्त्रों से सुन करके एक पाषाण में विष्णु की, नारायण की बुद्धि कर लिया, ऐसे ही आपने शास्त्रों से ब्रह्म के लक्षण का श्रवण किया। ब्रह्म कैसा है, शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद है, व्यापक है, आनंद स्वरूप है, अनंतम वही ब्रह्म अनंत है, ऐसा श्रवण किया। सुनने के बाद परोक्ष ज्ञान तो हो गया कि कोई चीज है जिसको ब्रह्म बोलते हैं, वो ब्रह्म कैसा, आनंद स्वरूप है, नाम रूप से रहित है, वाणी का विषय नहीं, आंख का विषय नहीं है, ऐसा आपको सुनने के बाद ज्ञान तो हो गया, परंतु हमारे इंद्रिय मन बुद्धि के पथ में आया नहीं, अनुभव में उतरा नहीं, इसका नाम परोक्ष ज्ञान है। तो परोक्ष ज्ञान होने के बाद अस्ति ब्रह्मेति सामान्य, अस्ति है, क्या है, ब्रह्म, इतना ही ज्ञान हुआ कि ब्रह्म है, इसका नाम है परोक्ष ज्ञान। इसी बात को कठोपनिषद में कहा, अस्तीति बोधव्यम तत्व भावे न चो भयो, कहा ना कठोपनिषद में, मतलब है क्या, सत्ता। तो जैसे शास्त्रों को सुनने के बाद हमारे बुद्धि में निश्चय हो जाता है कि सालग्राम में भगवान विष्णु का निवास होता है, नर्मदा के पाषाण खंड में शिव जी का निवास है, ऐसा जो निश्चय हुआ इसका नाम परोक्ष ज्ञान। फिर उपासना करते करते साक्षात्कार हो तो बोलेंगे परोक्ष ज्ञान। ऐसे शास्त्रों को सुनने के बाद निश्चय हो गया कि सतचित आनंद का नाम ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही हमारा जीव है, जीव ब्रह्म एक ही है, दो नहीं है, ऐसा निश्चय हो गया। अस्ति ब्रह्मेति सामान्य ज्ञानम, अत्र परोक्ष धी, इसका नाम परोक्ष ज्ञान है। प्रत्येक व्यक्तिम का अर्थ करते हैं बुद्ध्यादि साक्षिणम, मन बुद्धि का जो साक्षी मतलब प्रकाशक, आनंद आत्मानम, आनंद स्वरूप जो आत्मा है उसका अनुलिख्य अविषयी कृत्य, विषय नहीं बनाया, अनुभव नहीं आया। उल्लेख देखो, उल्लेख बोलते हैं अनुभव में आना, और नए समाज कर दो अनुलिख्य मतलब अनुभव में नहीं आया। अनुलिख्य का अर्थ हुआ अविषयी कृत्य, विषय नहीं बना हमारा, अनुलिख्य अर्थ किया अविषयी कृत्य, विषय नहीं बना, अनुभव नहीं आया। शास्त्रात, शास्त्रों से हमने खूब श्रवण किया, कैसा सत्य ज्ञानादि वाक्य जाता, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस वाक्य से ब्रह्मास्ति ब्रह्म है इत्येवं सामान्य न्याकारेण जायमानम ज्ञानम अत्र अस्याम उपासनायाम परोक्षधि परोक्ष ज्ञानम विवक्षितम इत्यर्थ। इसको सामान्याकार ज्ञान बोलते हैं, सामान्य ज्ञान हो गया, यही ज्ञान उपासना में विवक्षित है। शास्त्रों को सुनने के बाद निश्चय हो गया, क्या निश्चय हुआ कि ब्रह्म जो है वही आत्मा, जीव ब्रह्म का ऐक्य निश्चय हुआ, जीव ब्रह्म की एकता निश्चय हो गई। अनादिकाल से जो जीवात्मा परमात्मा में खाई थी, खाई मतलब कि भेद था, गैप था, फासला था, जिस प्रकार नदी के दो किनारे होते हैं, बायां दाएं को दो किनारा, नदी का मतलब दो छोर है, अब दोनों छोर को सेतु जोड़ देता है। आपने बढ़िया ब्रिज बनाया, सेतु बनाया, अब सेतु से आप इस पार से उस पार चले जाते हैं, उस पार से इस पर आ जाते हैं, पर जब तक सेतु ने ब्रिज नहीं तब तक अब दोनों का अंतर बना हुआ है, सेतु दोनों को जोड़ दिया, मिला दिया। ऐसे जीवात्मा परमात्मा इन दोनों में बड़ी भारी खाई है, दरार फासला पड़ गया, भाई मैं तो जो है ना अल्पज्ञ हूं, जीव हूं, वो महान का नाम ईश्वर है। जब वेदांत सुनते हैं तो आपको ज्ञान होता है कि जीवो ब्रह्मैव ना पर, जीव ब्रह्म भी है। अच्छा, जीवो ब्रह्मैव तो बोलते हैं, ब्रह्म जीव ऐसा बोलते हैं, जीव ब्रह्म ऐसा बोलते ना, तो ब्रह्म जीव ऐसा कोई बोलता है, क्यों नहीं बोलते? भाई एक घटा मिट्टी की बात घटा लो ना, एक घड़ा है, बहुत अधिक मिट्टी पड़ी है 50 क्विंटल, ये तो आप बोल सकते हैं कि जो घड़ा है ना, घड़े में मिट्टी है, ये घड़े की मिट्टी है ना, उस मिट्टी से अभेद है, पर ये नहीं बोल सकते हैं कि वो जो मिट्टी है घड़ा, क्योंकि बहुत वो तो मिट्टी है भाई, उस मिट्टी से तो हजार घड़े बन सकते हैं, इससे तो हजार घड़े नहीं बनेंगे, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो घड़े की मिट्टी है वही मिट्टी है, घड़े की मिट्टी वही मिट्टी है बोल सकते हैं, पर ये नहीं बोल सकते कि वो जो मिट्टी है ना सब घड़ा है, क्योंकि उससे तो हजार घड़ा बन सकता है। जैसे व्यवहारिक जगत में आप कहते हैं तू राजा बाबू है, तू इंद्र है, बोलते ना किसी को कुछ से काम लेने के लिए, खुश करने के लिए, भाई तू राजा बाबू है, तू रानी बेटी है, तू इंद्र है, पर आप राजा को नहीं बोल सकते हैं कि तू जो है क्या बोलते हो उसको रोड पति है। रोड पति बोलते रोड का स्वामी जो घूमने वाला हो। आप राजा को महाराजा को ऐसा प्रशंसा करो कि भाई तू रोड पति है तो बुरा मान जाएगा। हाँ बोले देखो छोटा बना दिया हमको घुमक्कड़ बना दिया। ऐसे ही जीव तो ब्रह्म हो सकता है पर ब्रह्म को जीव नहीं बना सकता। तू बड़ा है ना महान है वो जीव रूप में नहीं आ सकता। हाँ पत्थर में मूर्ति है ये बोल सकते पत्थर मूर्ति है पत्थर मूर्ति है क्योंकि आप द्रव्य हटा देंगे मूर्ति निकल जाएगी तो मूर्ति में पत्थर बन जाएगा ना। देखिए पत्थर में मूर्ति है का मतलब हुआ कि कारीगर अपद्रव्य को हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई और मूर्ति में पत्थर है बोल सकते जो मूर्ति है ना आकार प्रकार उसमें वही पत्थर है बोल सकते कोई फर्क नहीं परंतु पूरा पहाड़ नहीं बोल सकते हैं उतने अंश में बोल सकते इतने अंश में मूर्ति है कि जो ये मूर्ति है ये पत्थर की है तो दोनों में तो हो जाएगा परंतु पहाड़ में नहीं बन सकता। पहाड़ तो बहुत बड़ा है ना जो पहाड़ है ना वो मूर्ति नहीं हो सकता है क्योंकि तो बहुत बड़ा पहाड़ है। हाँ मूर्ति पहाड़ नहीं हो सकता परंतु पहाड़ में मूर्ति हो सकता पहाड़ में मूर्ति तो निकल जाएगी आपकी बना सकते हैं आप परंतु वो छोटे से जो आपका पाषाण खंड का जो मूर्ति है वह मूर्ति पहाड़ नहीं बन सकता ऐसा कर घटाइए। पहाड़ तो बहुत बड़ा है ना तो छोटा सा जो मूर्ति है वो पत्थर का पाषाण नहीं बन सकता। परंतु यहां तो बोल सकते जो पत्थर है वही मूर्ति मूर्ति है वही पत्थर है ऐसा बोल सकते यहां जैसे कि जो जीव है वो ब्रह्म है और जो ब्रह्म है वही कुटस्थ है। कुटस्थ तो बोल सकते जीव नहीं बोल सकते कुटस्थ दोनों एक है। जीव में क्या होता है छोटी उपाधि होती है जीव में अंतःकरण नाम की छोटी उपाधि है इसीलिए उसको आप ब्रह्म नहीं कह सकते। हाँ जीव ब्रह्म हो जाएगा जीव छोटी उपाधि को बोलते ना तो अंतःकरण की उपाधि वाले का नाम जीव है तो जीव है वो तो ब्रह्म हो जाएगा। एक लोटा जल नदी मिल गया तो वह क्या हो गया आपका नदी रूप हो गया पर नदी उस लोटे में नहीं आ सकती है। नदी तो बहुत बड़ी नदी में देखो नौका चलती है मछलियां तैरती हैं लोग नहाते हैं क्योंकि नदी की उपाधि बहुत बड़ी है और लोटे की उपाधि छोटी है तो लोटे का जल तो नदी में मिलके नदी रूप तो हो सकता है संभव है पॉसिबल है पर कहो कि नदी जो है ना लोटे में आ जाए तो संभव नहीं है ऐसे यहां पर इसलिए कहते जीवो ब्रह्म ही बोलते। हाँ ऐसा कर सकते चलेगा मतलब कि अध्यस्त अधिष्ठान रूप हो सकता है पर अधिष्ठान अध्यस्त में नहीं आ सकता है ये प्रयोग कर सकते। तो सामान्य ज्ञान सभी को है क्या कि मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान आपको स्वानुभव नहीं है। अभी आप जानते हैं कि ब्रह्म कैसा है सच्चिदानंद अखंड एक रस है शुद्ध बुद्ध मुक्त है वही मैं हूं ऐसा ज्ञान तो आपको वेदांत श्रवण से हो गया परोक्ष ज्ञान तो हो गया परंतु स्वात्मतया अनुभव नहीं है। उस अनुभव के लिए उपासना यहां पर बता रहे हैं मैंने मैं ब्रह्म हूं इसका नाम हो गया परोक्ष ज्ञान। देखिए अहम ब्रह्मास्मि में अहम का अर्थ है मैं ब्रह्म हूं इसका नाम परोक्ष ज्ञान है। ठीक तो लिखा है लिखा देखिए ब्रह्मास्ति इत्येवम् ब्रह्म है इसका नाम परोक्ष ज्ञान। अच्छा हाँ तो ठीक लिखा अनुवाद ठीक किया है अस्ति का अर्थ है हिंदी अनुवाद का ठीक लिखे हैं अस्ति बोलते है कौन सात सुनने के बाद आपको निश्चय होता है कि ब्रह्म कोई चीज है, परंतु अनुभव में नहीं आता है। अनुभव में उतारने के लिए जब उपासना करेंगे कि मैं ही ब्रह्म हूं, तब जाकर वह जो ब्रह्म है उसका अनुभव होगा। ये बता अप्रोक्ष होगा कि ब्रह्मास्ति तेवं सामान्याकारेण जायमानं ज्ञानं अत्र अस्याम उपासनायाम, उपासना में जो परोक्ष दिवल परोक्ष ज्ञान है विवक्षित है। दृष्टांत दिया, जैसे कि विष्णुवादी आप सालग्राम में विष्णु की बुद्धि करते हैं, विष्णुवादी मूर्ति प्रतिपादक शास्त्र जन्य ज्ञानवत इत्यर्थ। जैसे देखो सालग्राम में विष्णु भगवान का आरोप करते हैं, आरोप ये साक्षात विष्णु भगवान है, पर आप ऐसा नहीं कह सकते यही विष्णु, इतना ही नहीं कह सकते, सालग्राम ही विष्णु ही नहीं लगा सकते आप। सालग्राम में विष्णु की बुद्धि तो हो सकती, यही नारायण यही विष्णु है, पर इतना ही है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उससे अधिक विष्णु की सत्ता है। सालग्राम तो एक सीमा में बंधा हुआ है, परंतु विष्णु व्यापक तत्व है, तो व्यापक तत्व का सालग्राम में आरोप करके उपासना बन जाएगी। परंतु आप इतना ही है ऐसा आरोप नहीं कर सकते, क्योंकि विष्णु तत्व व्यापक है। ऐसे ही आप जो यह कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तो मय में अम्लमय जीव में ब्रह्मत्व का आरोप करना है, इसको बोलते संपत उपास अहंग्रह उपासना। मतलब मय में अहंग्रह मतलब कि अहम तया चिंतन, जैसे कि सालग्राम में आप विष्णु का चिंतन करते हैं कि साक्षात ये नारायण के प्रतीक हैं, ऐसा चिंतन करते हुए आप भोग लगाते हैं, बोलते हैं ना आप कि पादयोपाद्यम। सालग्राम में पाद दिखता नहीं आपको, काला काला पत्थर केवल है, पर काले काले गोल मटोल पत्थर में आप क्या बोलते हैं, पाद्योपाद्यम समर्पयामी हस्त्यो अर्घ्यम समर्पयामी, वहां पर हाथ पैर दिखता नहीं, पर आप शास्त्रों से सुनकर वैसी बुद्धि बनाकर उपासना करते हैं। ऐसे यहां पर आपको मय में जो आपका मय में बोल रहे उसमें ब्रह्म तया चिंतन करना, यही ब्रह्म है, इसी का नाम ब्रह्म है। अब घटा सकते, इसको घटा लेना, कैसे घटाना कि ब्रह्म का लक्षण है यतो वा इमानि भूतानि जातानि जीवन्ति यत प्रियन्ति अभिसंविशन्ति च तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्वेति। लक्षण है जिससे भूत प्राणी प्रकट होते हैं, जिसमें स्थिर हैं, जिसमें विलय को जाते हैं, जिस रूप को प्राप्त कर लेते हैं, उसका नाम है ब्रह्म। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, मृन्मय स्थित है, फूटने के बाद मिट्टी में विलय हो जाएगा, इसके बाद मिट्टी भाव को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही कि जो मैं है ना, इस मैं से पूरा संसार खड़ा है ना, मैं से संसार खड़ा है, और मैं है तब तक स्थित है, और अंत में सुषुप्ति में मैं में सबका विलय हो जाता है। इसलिए ये मैं तत्व क्या है, ब्रह्म ही है। इस प्रकार से चिंतन करने का नाम है अहंग्रह उपासना। जब ऐसा चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे विषया शक्ति दुराग्रह दूर हो जाएगा, तब आपको उसी तत्व का अपरोक्षानुभव होने लगेगा। शेष प्रश्नों सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति।